तो इसको सीखेंगे। वार्ता भी हो रही है भगवान में और जदु महाराज में, और इधर वार्ता हो रही है तो भगवान में और उद्धव जी में, उधर सुखदेव गोस्वामी में और परीक्षित महाराज में। यह ऐसा विषय है कि वास्तव में जो साधना किया है, जो आत्मा के विषय में बहुत बहुत सुना है, देह से पृथक अवस्थिति को जानता है, वही व्यक्ति इसको समझ पाएगा। लेकिन यह शिक्षा वायु से मिलती है, शरीर से आत्मा अनासक्त है, पृथक है। आत्मा तो इस तरह से है ही, लेकिन आत्मदृक जो व्यक्ति आत्मदृक हो गया है, योगी का विशेषण है आत्मदृक योगी, जो आत्मा को देख रहा है, आत्मा को शरीर के धर्मों से शांत कर नहीं देख रहा है, उपाधि से हीन करके जो अपने को देख रहा है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं चिन्मय हूँ और मैं शरीर में अवस्थित हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो इस तरह का योगी जानता है कि है आत्मा, यद्यपि स्वयं शरीर के धर्मों का आश्रय है, शरीर इसी पर टिका हुआ है, फिर भी यह शरीर नहीं है। देहेशु प्रविष्ट है अपि, और देहेशु का विशेषण दे रहे हैं पार्थिवेशु, पृथ्वी का विकार है देह, विविध देह में आत्मा जाता है, लेकिन आत्मा उस शरीर के स्वभाव के अनुसार हो नहीं जाता, वो उसे पृथक है। तो आत्मदृक योगी इसको समझता है, जैसे शरीर में कई धर्म प्रकाशित होते हैं, यह धर्म का अर्थ है बचपन जवानी, इसको स्वभाव कहते हैं। शरीर बचपन में छोटा रहता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है, जल जाता है या मिट्टी में चला जाता है। तो आत्मा इस तरह से नहीं है, चाहे शरीर बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लेकिन आत्मा इस तरह से बच्चा जवान बूढ़ा नहीं होता है, वो जैसा है वैसा है, शरीर बदलेगा। और देह के जो धर्म है, स्वभाव है, वो आत्मा की उपस्थिति के कारण, इसलिए तद गुणाश्रय, देह के गुणों का, धर्मों का यह आश्रय है, इसी के कारण बचपन आ रही है या जवानी आ रही है, बुढ़ापा आ रही है, आत्मा है तब। यदि आत्मा छोड़ करके चला जाए तो शरीर में इस प्रकार का परिवर्तन होगा ही नहीं, जैसा शरीर रहेगा वैसा रहेगा। जैसे कोई वृक्ष है, उससे आत्मा निकल जाता है तो वृक्ष वहीं पर ठूठ बन करके रह जाता है, अब वृक्ष बढ़ता नहीं है। तो वृक्ष का बढ़ना, फल फूल देना, जैसे आत्मा पर निर्भर है, चेतना पर निर्भर है, उसी तरह से हमारा जो शरीर है, शरीर में बढ़ना घटना क्षीण होना जो कुछ भी है, वो आत्मा है तब हो रहा है, परंतु फिर भी शरीर के धर्मों से आत्मा लिप्त नहीं है, वहीं से पृथक। आत्मा का दूसरा स्वभाव है, शरीर का दूसरा स्वभाव है। तो आत्मदृक योगी इस प्रकार गुणों से लिप्त नहीं होता है, वह शरीर से परे रहता है। यदि तद गुणाश्रय का अर्थ है कि वो प्रयोग करता है इस शब्द का, वो भी कहता है शरीर को मैं, परिवार को या आश्रम को मेरा कहता है, लेकिन वो कहता भर है। जैसे ड्रामा में, नाटक में लोग एक दूसरे को अपना संबंधी कहते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ हमारा कोई बेटा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। जैसे हम लोग पहले नाटक करते थे, रामलीला करते थे, तो कोई रावण बनता था, कोई हनुमान जी बनता था, तो बोलने मान लीजिए रावण बोल रहा है, अरे मूर्ख बंदर तू क्या बक रहा, मेरी समता का दुनिया में कोई नहीं। रावण कहता है हनुमान जी, और रावण ही उस लीला का सूत्रधार। हो सकता है कि अपना खास मित्र हनुमान जी बना हुआ है, लेकिन उसको अरे मूर्ख बंदर तू क्या बक रहा है इस तरह बोल, और वह कहते समय भी इतना मालूम है उस रावण बने हुए व्यक्ति को कि मैं रावण नहीं हूँ और यह हनुमान नहीं है, फिर व्यवहार करता है। व्यवहार में तो आओ युद्ध होता है, लेकिन युद्ध नाटक है, नकली है। इसी तरह से देह से मुक्त पुरुष भी देह के अनुसार व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन वो पूरा मुक्त रहते हैं। नेपथ्य में आते हैं, उन्हें ड्रेस बदलने में देर नहीं लगते, फिर अपना वही फुल पैंट धोती कोट और मुकुट सब उतर जाते हैं, बनावटी। वो भी कहीं किसी के पास जाते हैं आते हैं घूमते हैं तो वहाँ पर ऐसा व्यवहार करते हैं लगता है अरे ये तो विषय हो गया, ये हो गया, वैसे हो गया, लेकिन वो मुक्त होता है शरीर बाहर ही नहीं शरीर से भी, शरीर से बिल्कुल मुक्त होता है। किस तरह से, जैसे वायु गंध से अलग होता है, गंधवान प्रतीत होता है वायु, प्रतीति ऐसी होगी कि गंध में हवा में सुगंध है, ये है वो है वो है, लेकिन वो बिल्कुल पृथक है। वो जो गंध है वो वायु का नहीं है, वायु का उत्पादन नहीं, वायु परिणत नहीं हुआ है गंध के रूप में, गंध वह पृथ्वी का है और वायु से अलग है। तो इसी तरह से जो देह है यह पार्थिव है, यह भी पृथ्वी का है और आत्मा क्या है, ममई वांशो जीव लोके, वह चिदघन भगवान का अंश है, वह इस पृथ्वी का नहीं है। इस चेतना में जोगी हमेशा बना रहता है, ये वायु से सीखना चाहिए जोगी को। आत्मदृक योगी गुणैर न युज्यते, हम लोग भी हवा का बहना सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं है कि ये गुरु हमको ये शिक्षा दे रहा है। तो पृथ्वी वायु आकाशम, पृथ्वी से तीन शिक्षा लिए, क्षमा परात्मता और परोपकारिता, वो पर्वत और वृक्ष। वायु से क्या क्या सीखे, संतोष, प्राण वायु से संतोष सीखे और बाह्य वायु से कहीं भी अनाशक्ति नहीं, और एक और बाह्य वायु से शिक्षा सीख रहे हैं पुष्पों के गंध आदि के संबंध से कि आत्मा देह से बिल्कुल भिन्न चीज है। यद्यपि वो प्रतीत होता है देहवान देह जैसा लेकिन वास्तव में देह से परे है। तो मुक्त योगी किस तरह से देखते हैं अपने को, अंतरहितश्च स्थिर जंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्त्या व्यवच्छेदम संगमात्मनो मुनिर्नभस्वं विततस्य भावे। तो वायु से शिक्षा हो गई, अब आकाश से भी कुछ सीख ले। ठीक है, हम यही बंद करते हैं, ये पूरा नहीं कर पाएंगे आकाश की शिक्षा। तो पृथ्वी से और वायु से जो शिक्षाएं मिली हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, विचार करना चाहिए और आगे 22 गुरुओं की लाइन अभी लगी है। हरे कृष्णा, जय श्री देवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पृथ्वी वायुराकाशम् आपोग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतोज्गरः सिन्धुः पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शरकृत सर्पः पूर्णनाभिः सुपेशकृत् धीरो दैव वशानुगैः तद्विद्वान् चलेत् मार्गात् अन्वशिक्षं क्षितैर्व्रतम् शश्वत्परार्थ सर्वेहः परार्थैकान्त सम्भवः साधु शिक्षेत भूभृतः नवशिष्यः परात्मताम् प्राणवृत्त्यैव संतुष्येन मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः ज्ञानं यथा न नश्येत
नावकीर्जेत वाङ्मनः विषयेष्वाविशन् योगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोष व्यतेतात्मा न विसर्जेत वायुवत् पार्थिवेष्वह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदृक् अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्त्या व्यवच्छेदमसङ्गमात्मन मुनीर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत् तेजो वन्नमयैर्भावै मेघाद्यैर्वायुनेरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वात् कालसृष्टैः गुणैः पुमान्। अब जल से क्या शिक्षा मिलती है बता रहे। स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्ध माधुर्यस्तीर्थ भूर्निर्णाम मुनिः पुनात्यपामित्रम् इक्षोपस्पर्श कीर्तनैः। अग्नि से शिक्षा तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षो दर्भाजनः सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत् क्वचित् छन्नः क्वचित् स्पष्टः उपास्यः श्रेय इच्छताम् भुङ्क्ते सर्वत्र दात्रीणाम् दहन् प्रागुत्तराशुभम् स्वमायया सृष्टमिदम् सदसल्लक्षणम् विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत् स्वरूपोऽग्निरिवैधसि। चन्द्रमासे विसर्गाद्यः श्मशानान्तः भावादेहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेन व्यक्तवर्त्मना। पुनः अग्निश शिक्षा कालेन योगवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोग्नेर्यथार्चिषा। अब सूर्य से शिक्षा गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गायिव गोपतिः बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थैव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिः आत्मा चावस्थितोऽर्कवात्।
अंतरहितः भीतर स्थित च और बाहर भी स्थिर जंगमेषु अचर और चर में एक जगह स्थित रहने वाले पदार्थों में और चलने वाले पदार्थों में ब्रह्मा ब्रह्म भगवान आत्मभावेना अपने मन के भाव से समन्वयेना जो ब्रह्म तक पहुँचता है उसके द्वारा व्याप्त्या व्याप्ति द्वारा अव्यवच्छेदं परिच्छिन्नता शून्यता असंगम और असंग आत्मनः भगवान का मुनि ही मननशील व्यक्ति नभस्त्वाम नभ तुल्यत्व आकाश के गुण को वितस्या व्यापक के भावये भावना करे। यह श्लोक भी बहुत कठिन है। इसके दो अर्थ हैं, एक ईश्वर परक भगवान परक और दूसरा जीव परक। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के यहाँ जीव परक ही आप लिखे हैं। आकाशात शिक्षितम संभावना द्वयम आह अंतरहितस्चेति द्वयेन। अब यहाँ भगवान दत्तात्रेय आकाश से जो शिक्षा लिए हैं उसको बता रहे हैं। इस श्लोक में दो संभावना की शिक्षा लिए हैं। संभावना जैसे आपने सुना था पहले, असंभावना विपरीत भावना, और इसमें है संभावना। असंभावना का अर्थ है कि ब्रह्म है ही नहीं, चिद पदार्थ नहीं है, केवल जड़ पदार्थ। और विपरीत भावना का अर्थ है ये ब्रह्म है लेकिन वैसा नहीं है जैसा शास्त्रों में लिखा गया, कुछ भिन्न है। परंतु संभावना का अर्थ होता है ब्रह्म के स्वरूप गुण को ठीक से समझना, संभावना का। संभावना का संस्कृत में अर्थ होता है सम्यक स्थिति, संभाव। संभावना मतलब जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉसिबिलिटी या उर्दू में उम्मीद, ये अर्थ नहीं होता है। संभाव का अर्थ है सम्यक स्थिति। तो दो संभावना का ज्ञान इसमें मिलता है ब्रह्म के अस्तित्व का आकाश से। क्या क्या? एक तो अव्यवच्छेद और दूसरा असंग। तो पहले आत्मा के अर्थ में इसको लिया जाए। आत्मा चर और अचर देहों में स्थित रहता है, अंतरहित च स्थिर जन्म में इसको। मतलब देह में प्रविष्ट होने पर भी मुनि को चाहिए कि वह विवेक से सर्वव्यापक आत्मा के अपने को स्थिर जन्म में सुसमन्वय न वह देखे कि स्थिर है, उन्हें अचर और चर सभी पदार्थों में मैं व्याप्त हूँ, और व्याप्त हो करके भी आकाश की तरह परिच्छेद रहित हूँ और असंग हूँ। परिच्छेद का अर्थ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, लंबाई चौड़ाई मोटाई या आयतन वर्गाकार, ये सब कुछ नहीं। आकाश वास्तव में कुछ नहीं है, वस्तुएं इसमें रखी जाती है। जैसे एक प्रकार रखा गया है, तकिया रखा गया है, तो इतना दूर आकाश कटा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो कटा हुआ नहीं है। जब ही तकिया को हटा देते हैं, पूरा आकाश वहाँ जय करके रहता है। तो जब यह है उस समय भी आकाश कटा नहीं है, और हटा देंगे तो बनेगा नहीं, ज्यों का त्यों है। इसको अव्यवच्छेद कहो। आकाश है इसलिए बीच में घर उठा दिए या कुतुब मीनार बना दिए, इसका मतलब नहीं कि उतना दूर आकाश कट गया। आकाश रहेगा। अच्छा, और दूसरी असंगता कि आकाश में कोई भी वस्तु आवे, चाहे बर्फ आवे, चाहे आग आवे, अच्छा कोई वस्तु आवे, उन वस्तुओं के स्पर्श से आकाश अशुद्ध नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम मांस कर लो, थोड़ा रख दिया गया, लटका दिया गया, तो आकाश अशुद्ध हो गया। आकाश निर्लिप्त है, इसको असंग कहते हैं। इसी प्रकार से आत्मा विविध शरीर में रहता है, विविध जगह पर जाता है, लेकिन वास्तव में प्राकृतिक वस्तुओं से आत्मा में कोई कटाव छटाव नहीं होता है, और न तो वह कहीं सटता है। वास्तव में देह है आदमी, असंगो है यम आत्मा, यह आत्मा असंग है और अपरिच्छिन्न। अच्छा, इसका ब्रह्मात्म भावे न आत्मन न भस्त्वम भावे, आत्मन मन जीव का मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से मेरा ऐक्य है, इस भाव से नभस्त्वम नभतुल्यत्वम भावे। लेकिन ये अर्थ बैठता नहीं है मन में, अंततः इसका अर्थ भगवत परक ही होगा। लेकिन भगवत परक अर्थ करने में फिर अन्वय ठीक से हमारी समझ में नहीं आ रहा है, भाव तो समझ में आ रहा है। यहाँ भावेत शब्द से यह कहा गया कि ये भावना करनी चाहिए किसको, मुनि को। कथम भूत मुनि अंतर्हित, जो देह में अस्थित है उस मुनि को भावना करनी चाहिए। क्या भावना? वितस्य आत्मन, व्यापक आत्मा के नभस्त्व, नभतुल्यता की भावना करनी चाहिए। आत्मा कहाँ व्याप्त है? स्थिर जंगमे सु। क्या भावना करनी चाहिए? नभस्त्वम क्या है? अव्यवच्छेद और असंग। ठीक है, तो क्या हु बहु आत्मा आकाश ही है? नहीं नहीं, ब्रह्मात्म भाव है ना, समझ रहे, ब्रह्मात्म भाव। चार अचर सभी वस्तुओं में भावना करनी चाहिए कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। सर्वम खल इदम ब्रह्म, समन्वेति इति समन्वय, जो समाया हो किसी वस्तु में तो उसको समन्वय कहते हैं। इस भाव से कि ब्रह्म है, जगत के रूप में परिणत है, और वह ब्रह्ममय है, इस तरह से अपने को असंग और अविच्छेद अपरिच्छिन्न देखे। लेकिन जीव को इस तरह से कोई देखना चालू करे कि मैं ही सब जगह समाया हूँ और मेरी ही अभिव्यक्ति जगत है, यह पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इसका सही अर्थ देखिए। अणुर हेस आत्मा इत्यादि श्रुति प्रतिपादित अन्वयेन, यहाँ समन्वय का अर्थ ये हुआ, समन्वय न समन्वय के द्वारा अपने समन्वय के द्वारा भगवान को देखे। आत्मन नभस्त्वम भावे, आत्मा माने परमात्मा के नभस्त्वम आकाश जैसी नभ जैसी असंगता को अपरिच्छेद को सोचे, इसका ही अर्थ है। तो समन्वय का क्या अर्थ है? समन्वय का अर्थ है कि अणुर ही ऐसा आत्मा इत्यादि श्रुति प्रतिपादित अन्वयेन सर्वव्याप्य संभवात अणु स्वरूप से व्यापक स्वरूप है कि भावना की निरर्थी कई व्या अन्वय करके देखे। तो श्रीपद श्रीधर स्वामी जी की टीका कोई काट रहे हैं, काट नहीं रहे, वास्तव में एक लाइन निकलते जीव गोस्वामी जी और श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी भी इसका भगवत परक किए। सिद्धांत प्रदीप में श्रील सुखदेव जी टीकाकार है, वे कहते हैं कि अणुर ही एस आत्मा, जहाँ जीवात्मा का वर्णन किया गया है तो वहाँ कहा गया है यह अणु है। तो जो अणु है उसके लिए सर्वव्याप्ति असंभव है, जीव के लिए कभी भी नहीं कहा गया है कि अणु रणियन महतो महियन, भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान अणु से अणु है और महान से महान है, लेकिन जीव के लिए हमेशा यही बात कही गई है कि अणु है, छोटा है। तो जो अणु है वह सब जगह व्याप्त नहीं हो सकता है। तो अणु स्वरूपस्य और व्यापक स्वरूपस्य की भावना भी निरर्थिका है अवस्था। तो कोई कहे कि ठीक है आत्मा जीव अणु है, लेकिन इसको व्यापक ब्रह्म के साथ एक की भावना करने में क्या दोष है? जीव को अगर यह कोई सोचे कि मैं भगवान हूं तो क्या हानि है? तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि यह जो भावना है वो निरर्थिका है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। नहीं परमाणु मेरु भवन या मेरु भवती, एक परम अणु धूलि का कण नहीं कहीं नीचे गिरा है और उसको कोई कह दे कि तुम भावना करो कि मैं मेरु पर्वत हूँ, तो भावना करने से मेरु पर्वत हो जाएगा। भावना करने के लिए वह बात कही जाती है जो सत्य है, जो स्वतः सिद्ध है, उसी का रियलाइजेशन किया जाता है, मन में देखा जाता है, इसको भावना कहते हैं। भावना का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम उल्टा भावना करे। नहीं मेरु नहीं परमाणु मेरुर भावना या मेरुर भवती, अब कोई मूस है और उसको कोई कहे तुम भावना करो कि मैं पहाड़ हूँ क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ, तो मूस मोटा ही लोढ़ा हुई, तो लोढ़ा होगा ज्यादा से ज्यादा भावना कर, तो क्या होगा? जीव की भावना की जाए कि आकाश की तरह परिच्छेद रहित है और निर्लिप्त है, असंग है, ये है वो, एक बात बैठती नहीं। वास्तव में भगवान के लिए यह ज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, तत्वमसीति वाक्यम तु अंश भूतस्य आत्मनो अंशिक पृथक अवस्थाना भावात अवस्थाना भेदम वदति न तु स्वरूपतः ऐक्यम अन्यथा सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति अनेनापि सर्वस्य चेतना चेतनस्य स्वरूपैक्यं प्रसज्यते। तब कोई तर्क करे कि यह वेद में क्यों लिखा गया है कि तत्त्वमसि वह तुम हो, तत्त्वमसि तत् का अर्थ है वह और त्वम असि, पहले भगवान का वर्णन किया गया है वेदों में और जीव जो सुन रहा है वेद के वाक्य को उससे गुरु कहता है कि तत् त्वम असि, ऐसा क्यों कहा गया? यहाँ तत् का वैसे वास्तविक अर्थ हुआ तस्य त्वम असि, जो तत्पर भव अगर कहा जाए तो इसका अर्थ ही नहीं होगा कि तुम वही हो जाओ, तुम उसका भक्त हो जाओ, उसका परायण हो जाओ, श्याम सुंदर बात खड़ा है, खड़ा है, चलिए खड़ा है। तस्य त्वम असि तत्त्वम असि। अरे वृद्धा जी आप भी सावधान रहिए। तब त्वम असि तुम वही हो, यह भी अर्थ ठीक है, और तस्य त्वम असि यह भी अर्थ ठीक है। तो तब त्वम असि तुम वही हो, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है